हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मेरे साथ इतना गलत करके भी वे हमेशा खुद को सही साबित करते रहे। मुझे इतना दर्द देकर भी मुझसे उम्मीद रखी, जैसे वे सब भूल गए मैं भी भूल जाऊंगी। पर मैं नहीं भूली कुछ भी और कभी भूलूंगी भी नहीं। आज वो वक्त बहुत पीछे छूट गया है, पर उनके दिए जख्म वक्त के साथ नासूर बन चुके हैं। फिर भी अब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, सब बहुत पीछे छोड़ आई हूं मैं। अब मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम के रिश्तों की अब मेरी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं। उन्होंने मुझे जन्म दिया तो माँ बाप है मेरे, बस इससे ज़्यादा और कोई रिश्ता नहीं मेरा उनसे। और जैसे वे फॉर्मैलिटी का रिश्ता निभाते आए हैं, मैं भी जब तक हूँ इस रिश्ते को निभा लूँगी। आज तक मैं चुप रही, पर आज इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर बेटी पाल ना सकें, उनका ध्यान न रख सकें, उनकी जिम्मेदारी ना उठा सकें, और अगर बेटी इतनी ही बोझ लगती हो कि किसी के भी साथ उसका रिश्ता जोड़कर जिंदगी भर के लिए उस बोझ से छुटकारा पाना हो, तो ऐसे लोग कभी बेटियों को जन्म ही ना दें। भगवान उन लोगों को तरसा दे बेटी के लिए जिनकी नज़रों में उनकी कोई अहमियत ना हो, जिन्हें उनकी कद्र ना हो। और हर माँ बाप बस इतना याद रखें कि बेटियाँ सर का बोझ नहीं बल्कि माँ बाप का गुरूर होती हैं। उनके पंखों को काटने के बजाय उन्हें उड़ने को खुला आसमान दे। समाज और लोग क्या कहेंगे इस डर से उन चहचहाती चिड़ियों से उनका वजूद उनकी खुशियाँ कभी ना छीने। ये कभी ना भूलें कि इस समाज ने नहीं आपने उन्हें जन्म दिया है, वे समाज की नहीं आपकी जिम्मेदारी हैं। उस बच्ची को उम्मीदें इस निष्ठुर स्वार्थी समाज से नहीं आपसे होती हैं, वो इस समाज को नहीं आपको भगवान बनाकर पूजती हैं, तो उनकी नज़रों में अपना वो स्थान कभी ना खोएं। याद रखें कि अपने बच्चों के विधाता आप हैं और आपका दायित्व है उन्हें एक बेहतर भविष्य और जीवन देने का। ध्यान रहे कि बेटियों की शादी के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। अगर शादी आपने करवाई है तो उसके आगे की जिंदगी में जो होगा उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। इसलिए उनके लिए सही जीवनसाथी चुनना भी आपका दायित्व है और उनकी आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करना, उनका हर कदम पर साथ देना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, जिससे उनके जीते जी आपको कभी मुक्ति नहीं मिलती। याद रखें, लोगों का एक बार जो मन से उतर जाए उसे दिल दोबारा कभी स्वीकार नहीं करता। याद रखें कि दुख गैरों की कही बातों का नहीं होता, सबसे गहरे घाव अपनों की कड़वी बातें ही देते हैं। याद रखें कि वक्त निकल जाने पर किसी बात का कोई मोल नहीं रह जाता। प्रीति एक पल को ठहरी, फिर उसने अपने मम्मी पापा के झुके सर को देखते हुए आगे कहा, एक बार जब विषपान किया जाए तो अगर वक्त रहते उसका उपचार किया जाए तो उस इंसान को फिर भी बचाया जा सकता है, पर जब विष उसके पूरे शरीर में फैल जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है। ठीक ऐसे ही वक्त पर अपनी किसी गुनाह की माफ़ी मांगी जाए तो उस इंसान की नाराज़गी दूर करके रिश्तों में आई दूरियों को फिर भी कम किया जा सकता है, पर जब वक्त निकल जाए, नाराज़गी हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जब रिश्तों में नफ़रत की कड़वाहट घुल चुकी हो, तो ना उस इंसान की माफ़ी मिलती है, ना गुनाहों के बोझ से आज़ादी मिलती है, ना उन रिश्तों का कोई वजूद रहता है और ना ही उस शख्स के दिल में आपके लिए कोई जगह बचती है। जैसे एक निष्प्राण देह होती है, बिल्कुल वैसा ही होता है वो रिश्ता जो लोगों का दिखता तो है पर उसके होने का कोई औचित्य ही नहीं रहता। आज प्रीति ने बहुत कुछ कहा था। इतने सालों बाद आज उसने अपने माँ बाप के सामने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। जो दर्द उसने तब सहा था वो आज फिर उसके मन को कड़वाहट से भर गया था। उसने साफ शब्दों में जाहिर कर दिया था कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब माफ़ी मांगने का पछताने का कोई फ़ायदा ही नहीं। उसने कह दिया था कि उसके पास अब किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं। कह दिया था उसने कि उनका रिश्ता अब बस नाम मात्र का है। आज उसने न धीरज जी और शकुंतला जी को उनकी गलतियों का एहसास करवाया था, बल्कि हर माँ बाप को बहुत बड़ी सीख दी थी उसने। समाज की सोच पर कटाक्ष किया था कि बेटियाँ बोझ होती हैं, वे बोझ नहीं होती, उनके पंखों को काटकर उन्हें बोझ आप खुद बनाते हैं। खैर, दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो इन बातों से इत्तेफाक रखते होंगे, यहाँ तो सब मौन धारण कर चुके थे, किसी के पास कहने को कुछ भी नहीं था। प्रीति ने अपनी बात पूरी की, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए आगे बोली, भैया आपके लिए यहाँ आई थी, अब आप ठीक हैं तो वापस चली जाऊंगी और दोबारा कभी लौटकर यहाँ नहीं आऊंगी, और किसी से जुड़े रिश्ते को तो मैं अब मानती नहीं, पर आपकी बहन हमेशा रहूंगी। जब भी आपको अपनी इस बहन की याद आए बात कर लीजिएगा, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे, जब मिलने का मन करे आ जाइएगा, पर अपने साथ बस मेरी भतीजी को लेकर आइएगा, अपना ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि आपकी बहन का मायका आपसे है, अगर आपको कुछ हो गया तो मुझसे मेरा मायका छिन जाएगा, प्रीति ने सीधे से न सही पर आज कह दिया था कि राजेश के अलावा बाकी सबसे वो अपने रिश्ते तोड़ चुकी है। सालों से इन खोखले रिश्तों के बोझ को वो ढोती आ रही थी, पर आज उसने उस बोझ से भी छुटकारा पा लिया था। उसने अपनी बात कहने के बाद अपने आंसू पोंछे और अपने बच्चों को लेने के लिए हाथ बढ़ा दिए। राजेश चाहकर भी उसे रोक न सका, क्योंकि उसके दुखों को बढ़ाना नहीं चाहता था वो। उसने दोनों बच्चों को प्यार किया, फिर उन्हें प्रीति को दे दिया। अर्श बेटा, इधर आओ मामू के पास। राजेश ने नन्हे अर्श को अपने पास बुलाया, जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, पर सबको रोते देख खुद भी सुबकने लगा था। राजेश ने उसे भी प्यार किया, फिर आयुष्मान को देखकर मुस्कुराकर बोला, वैसे तो बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी ध्यान रखिएगा मेरी बहन का, और वो बच्चे को देने वाली बात के लिए नाराज मत होइएगा उससे। आयुष्मान ने अपनी पलकें झपकाते हुए हामी भर दी। सब वहां से चले गए। अब वहां बस राजेश, माधुरी, शकुंतला जी और धीरज जी ही रह गए थे। तीनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी प्रीति से माफी मांगने की। मांगते भी कैसे, जब प्रीति पहले ही कह चुकी थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब उनके माफी मांगने का कोई महत्व ही नहीं। आज प्रीति उन रिश्तों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी, जिसने उसे कभी न भरने वाले जख्म और असहनीय पीड़ा दी थी। वो अपने ही क्या जो वक्त पर अकेला छोड़ दें, उनसे बेहतर तो वो गैर है जो तन्हाई में हमारा साथ निभाए। वो अपने ही क्या जो अपनी बातों से हमें तोड़ दें, उनसे बेहतर तो वो गैर है जो हमें फिर से जीने की राह दिखाए। वो अपने ही क्या जो हमारे दर्द को न समझ सकें, उनसे बेहतर तो वो गैर है जो हमारे दर्द पर मरहम लगा जाए। वो अपने ही क्या जो हमें गैरों सा एहसास करवाएं, उनसे बेहतर तो वो गैर है जो गैर होकर भी हमारे अपने बन जाए। 2 महीने बाद मेरे बच्चे कहाँ हैं? आयुष्मान अभी अभी घर आया था और घर में पहला कदम रखते ही उसने अपने बच्चों को याद कर लिया था, जिनका नाम मानसी ने बड़े ही प्यार से प्रियांश और आयुषी रखा था। प्रीति की जिद के कारण उसी दिन वे गुड़गांव लौट आए थे। गरिमा जी ने रोकना भी चाहा, पर प्रीति वहां रुकना ही नहीं चाहती थी। शुरू में मानसी आई थी साथ, जिससे प्रीति की मदद हो जाती थी। बच्चों के जन्म के 20 दिन नामकरण की पूजा में लगभग सभी आए थे। प्रीति के मायके से बस राजेश ही आया था, तब तक वो भी काफी हद तक ठीक हो गया था। वो आ सके इसलिए नामकरण की पूजा इतने दिनों बाद रखी गई थी। अमृतसर से किसी को इनविटेशन नहीं गया था, पर गुंजन और नूर आई थी अपने भतीजे भतीजी को देखने, और मानसी के साथ मिलकर उन्होंने ये नाम पसंद किया था। प्रीति ने जसमीत को वीडियो कॉल पर बच्चों से मिलवा दिया था। रौनक और श्रेया भी आए थे अपनी बेटी श्रेष्ठा के साथ। नामकरण के बाद अवधेश जी के कारण गरिमा जी और मानसी को वापस जाना पड़ा था।
असल में उन्हें काम करने की आदत थी और अभी इतने भी लाचार नहीं थे कि कुछ काम न कर सके, इसलिए उन्होंने अपने लिए दूसरा काम ढूंढ लिया था। वही करते थे और ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती थी, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ा। गरिमा जी उनका ध्यान रखने के लिए उनके साथ चली गई थी और मानसी की खुद की जॉब थी। श्रेया कुछ दिन रुकी थी पर उसकी भी जॉब थी, तो वो भी चली गई। और तब से प्रीति और आयुष्मान ने ही मिलकर दोनों बच्चों को संभाला, जिसमें अर्श भी थोड़ा साथ दे देता था। जब आयुष्मान घर पर नहीं होता और प्रीति किसी काम में व्यस्त होती, तो वही दोनों बच्चों का ध्यान रखता, उन्हें खिलौनों से खिलाने की कोशिश करता, उनसे बातें करता और रोते तो जैसे तैसे गोद में लेकर चुप भी करवाता। आंटी भी कुछ वक्त के लिए आ जाती, पर आखिर में दोनों का ध्यान प्रीति को ही रखना पड़ता था, और दो दो बच्चों को संभालना कोई आसान बात तो बिल्कुल नहीं थी। कई बार प्रीति थक जाती, खींच उठती। हालांकि आयुष्मान जितना हो पाता उसकी मदद करता, पर आखिर में ज्यादा जिम्मेदारियां तो प्रीति को ही निभानी होती थीं। घर वापस आने के बाद से घर से निकलने से पहले तक का आयुष्मान का लगभग सारा वक्त उसके बच्चों के नाम रहता था। आरू और प्रियांश के साथ वो अर्श को भी पूरा वक्त और अटेंशन देता था। आज भी आदतन आयुष्मान ने घर में पहला कदम रखते ही पहले अर्श को अपनी गोद में उठाया, फिर अपने बाकी दोनों बच्चों को ढूंढने लगा। ये देखकर प्रीति एकदम से खींच उठी। आपके दोनों बच्चे सारा दिन मेरी जान खाते रहते हैं, इसलिए मैंने दोनों को बेच दिया।